ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण मूल वाल्मीकि रामायण भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे हैं और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सद ग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए, तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो, तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी, हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति होगी। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसको विचार करके अभ्यास करो और सर्वदा काल, सर्वस्थान और सर्व कर्मों के कर्ता चित्त को देहादिक में मत संसक्त कर केवल आत्मचेतन में स्थित। हे रामचंद्र जी, किसी वस्तु को सत्य जान के चित्त न लगाओ। हे राघव, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। बाहर से यदि वह क्षोभवान दृष्टि आता है, परंतु हृदय उसका सर्व कलना से रहित है और वह संपूर्ण लक्ष्मी से शोकता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, सो विगत ज्वर है, उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता, जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है, सो क्षोभवान भी दृष्टि आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब शोभायमान दृष्टि आता है, परंतु सूर्य को कदाचित क्षोभ नहीं, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभायमान दृष्टि आता है, पर क्षोभ उसे कदाचित नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मारामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत किनाही अचल है। जिसका चित्त आत्मपद में स्थित हुआ है, उसको सुख दुख अपने वश नहीं। जिस पुरुष को परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, उसका चित्त राग द्वेष से रंजित नहीं होता। जो आत्मध्यानी है और जो परम बोध का साक्षात्कार होकर कलना मात्र से मुक्त हुआ है, वह पुरुष असंसक्त कहता है। हे रामचंद्र जी, जो आत्मारामी पुरुष है, उनकी आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्तता निवृत्त हो जाती है, अन्यथा संसक्तता भाव निवृत्त नहीं होता। जब चित्त चैत्य भाव से रहित होता है, तब क्षीण चित्त कहता है और शांत कहलाता है, तब जागृत भी सुषुप्ति रूप हो जाता है। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है, सो फल का आरंभ नहीं हो, क्योंकि वह तो निरअहंकार हो जाता है।
श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 210। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसकी बुद्धि में पदार्थों का रंग चढ़ता है, वह राग द्वेष रूपी नरक से मुक्त नहीं होता, और जिस एक आत्मा का अभ्यास होता है, उसे अभ्यास के बल से सब जगत आत्म तत्व भासित होता है और वह राग द्वेष से मुक्त होता है। जैसे स्वप्न में किसी को अपना जागृत स्वरूप स्मरण आता है तो वह स्वप्न के सब जगत को अपना देखता है, वैसे जिसको आत्मज्ञान होता है उसको सब जगत अपना रूप ही दिखता है। सर्वदा आत्मसत्ता अनुभव रूप जागृत ज्योति है। जिसको ऐसी आत्मसत्ता में नास्तिक की भावना होती है वह गड्ढे में कीट होता है, पाषाण वृक्ष पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है और उनमें चिरकाल तक रहता है। जब तक उसकी बुद्धि का द्वैत का संयोग होता है तब तक जगत भ्रम देखता है और भ्रम नहीं मिटता, पर जब उसकी संवित को द्वैत का संयोग मिट जाता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, सम्यक ज्ञान से जगत के भ्रम का अभाव हो जाएगा। अभाव का निश्चय जगने पर फिर जगत नहीं भासित होता। जब संसार के पदार्थों से संवित बिंधी हुई है तब जैसा निश्चय होगा वैसे ही प्राप्त होगा और उसी निश्चय के अनुसार गति होगी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, नास्तिकवादी का वृत्तांत तो आपने कहा सो मैंने जाना, पर जो पुरुष हृदय में जगत को सत्य जानता है, आत्मबोध के मार्ग से दूर है और शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, उसको मोक्ष की क्या युक्ति है और उसकी क्या अवस्था होती है, यह मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त आप कहे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसका उत्तर मैंने प्रथम ही तुमसे कहा है, पर अब फिर तुमने जो पूछा है इससे फिर कहता हूं। पहले तो पुरुष का अर्थ सुनो। हे रामचंद्र जी, यह जगत न नेत्रों में स्थित है, न श्रवण में है और न नासिकादिक इंद्रियों में है, किंतु चैतन्य संवित में स्थित है। चैतन्य संवित ही पुरुष रूप है। जिसको उसमें निश्चय है वह ज्ञानवान है और उसको द्वैत कलना नहीं फुरती, और जो प्रत्यक्ष दृष्टिगत भी होती है तो उसके निश्चय में नहीं होती। जैसे आकाश में धूल दिखती है परंतु उसे स्पर्श नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान को द्वैत कलना स्पर्श नहीं करती। जिस चैतन्य संवित में फुरने का संबंध है उसको जगत का आकार दिखता है, और जिस पुरुष की संवित में देश काल क्रिया और द्रव्य का संबंध है वह कलंक में दृढ़ हो रहा है, और जो अपने वास्तव अद्वैत स्वरूप के अभ्यास से मार्जन नहीं करता वह वास्तव चैतन्य आकाश रूप होने पर भी कलंक से वासना के अनुसार जगत उसे अपने से भिन्न लगता है, द्वैत भ्रम नहीं मिटता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष ऐसा है कि देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहता है पर उसे आत्मसत्ता ज्यों की त्यों नहीं भासती तो वह अज्ञानी है। आत्मसत्ता जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता। जब आत्मसत्ता का साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होगा। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष न जीव है न स्फुरण है और न शरीर का नाश होने से इसका नाश होता है, यह केवल चिन्मात्र स्वरूप है पर वासना से भ्रम को देखता है। शून्यवादी लोग वृक्ष पर्वत आदि जड़ योनि पाते हैं, जो सदा अनुभव स्वरूप है उसको त्याग कर जो और को इष्ट मानते हैं वे मूर्ख है उनको आत्म सुख नहीं प्राप्त होता। आत्मा के प्रमाद से अहम त्वम भीतर बाहर आदि शब्द भाषित होते हैं। जब आत्मज्ञान हुआ तब सब शब्द आत्मरूप हो जाते हैं। जिन पुरुषों ने आत्म अनात्मा को निर्णय करके नहीं देखा वे पुरुषों में नीच है। जिस पुरुष ने निर्णय करके आत्मा में अहम प्रतीति की है और अनात्म का त्याग किया है वह महापुरुष है, उसे मेरा नमस्कार है। जिसने अनात्मा में अहम प्रतीति की है और आत्मा का त्याग किया है वह बालक है। जैसे आकाश में बादल ही हाथी और घोड़े के आकार से दिखते हैं और समुद्र में तरंग उठते हैं वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। पर द्वैत कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के नगर अपने अपने अनुभव में स्थित है और बाहर द्वैत किनाई भासते हैं सो आभास मात्र है, वैसे ही आत्मा में जो जगत भासित होता है वह आभास मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जिसको आत्मसत्ता का अनुभव हुआ है उसे जगत के शब्द अर्थ और राग द्वेष की कल्पना नहीं रहती, उसकी पुण्य पाप का फल स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, ज्ञान संवित का नाश कभी नहीं होता, इससे विश्व भी अनुभव रूप है। इस जगत का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जो तुम कहो कि प्रत्यक्ष घट आदि समवायक और निमित्त कारण उपजे दिखते हैं, तो जैसे स्वप्न में कारण कार्य अन होते भी दिखते हैं वैसे ही यह भी जानो। प्रथम तो स्वप्न में यह बने हुए दिखते हैं और पीछे कारण से होते दिखते हैं, वैसे ही यह भी जानो केवल भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न सृष्टि का जागने पर अभाव होता है वैसे ही ज्ञान से इनका भी अभाव हो जाता है। यह दीर्घकाल का स्वप्न है इसे जागृत कहता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने आप होती है और निद्रा दोष से भिन्न दिखती है वैसे यह जगत अपना ही रूप है परंतु अज्ञान से भिन्न दिखता है। जागृत में ज्ञान से सब अपना रूप भासित होता है, इससे राग द्वेष का अभाव हो जाता है। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी में भेद नहीं वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं, आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, तुम अपने अनुभव में स्थित होकर देखो कि सब ब्रह्म रूप है, जगत कुछ नहीं। वह सर्वात्मक रूप और साध्य है। जैसे शरद काल का आकाश शुद्ध निर्मल होता है वैसे ही आत्मसत्ता स्फुरण रूपी बादल से परम शुद्ध और शांत रूप है, और उसमें स्थित होने से मान और मोह का अभाव हो जाता है, किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रहती। जीव प्रारब्ध गति से जो कुछ आकार प्राप्त होता है उसको भोगता है। वह आत्मदृष्टि द्वारा दुख से रहित होकर प्रत्यक्ष आचार करता है, उसको शास्त्र का दंड नहीं रहता, वह परम शांत रूप विराजता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश रूप हूं और दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी जो भासती है वह भी चिदाकाश रूप है। आत्मसत्ता ही त्रिपुटी रूप होकर भासती है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। नास्तिकवादी जो यह कहते हैं कि परलोक कोई नहीं, अर्थात जो कहते हैं कि आत्मसत्ता कोई नहीं, वे मूर्ख है। हे राघव, जो अनुभव आत्म सत्ता न हो तो नास्तिक किससे सिद्ध हो? जिससे नास्तिकवाद भी सिद्ध होता है वही आत्म सत्ता है। जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष करते हैं और आत्मा का नाश कहते हैं वे महामूर्ख है। जैसे जागृत के प्रमाद से स्वप्न में इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष होता है, जीव इष्ट को ग्रहण करता है और अनिष्ट को त्यागता है। जागने पर सब अपना ही स्वरूप दिखता है और ग्रहण त्याग तथा राग द्वेष किसी पदार्थ में नहीं रहता, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से किसी पदार्थ में राग होता है और किसी में द्वेष होता है। जब आत्मज्ञान होता है तब सब अपना ही स्वरूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। चित्त के फुरने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के शांत होने पर लय हो जाता है। इसे जगत मन में स्थित है और वह मन आत्मा के अज्ञान से हुआ है। जब आत्मज्ञान होता है तब मनुष्य, देवता, हाथी, नाग आदि सब स्थावर जंगम जगत आत्मरूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। नास्तिकवादी जो नास्तिक कहते हैं वही अस्ति का साक्षी सिद्ध होता है। जिससे नास्ति भी सिद्ध होता है वह अस्ति आत्मपद है। उस अस्ति अनुभव के इतने नाम शास्त्रकार कहते हैं, सत, आत्मा, विष्णु, शिव, चिदाकाश, ब्रह्म, अहम ब्रह्म और अस्मि। एक कहते हैं कि शून्य ही रहता है और एक कहते हैं कि अस्ति पद रहता है। हे रामचंद्र जी, ये सब संज्ञा आत्म सत्ता ही की है। वह आत्म सत्ता अपना ही आप स्वरूप है, वही आत्मा मैं हूं। ये अंग जो मेरे साथ दिखते हैं इनको इष्ट पदार्थों से लेपन कीजिए अथवा चूर्ण करिए तो मुझे हर्ष या शोक कुछ नहीं होगा। इनके बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं और इनके नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता। हे रामचंद्र जी, तीन शब्द होते हैं, मैं जन्मा हूं, मैं जीता हूं और मैं मरूंगा। जो प्रथम न हो और उपजे उसको जन्म कहते हैं, मध्य में जीता कहते हैं और फिर नाश हो उसको मृतक कहते हैं। पर आत्मा में तीनों विकार नहीं है। आत्मा उपजा भी नहीं क्योंकि आदि ही सिद्ध है। वह मृतक भी नहीं होता क्योंकि अविनाशी है। चैतन्य आकाश सबका और काल का भी अधिष्ठान है, फिर उसका कैसे नाश हो? वह तो उदय अस्त से रहित है। जिसमें देश, काल, वस्तु और जगत का किंचन होता है उससे आत्मा का नाश कैसे हो? इससे आत्मा अविनाशी है। हे रामचंद्र जी, जिस वस्तु को देश और काल का परिच्छेद होता है उसका नाश भी होता है। ये देश, काल और वस्तु तीनों आत्मा में कल्पित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित होता है वैसे ही आत्मा में ये तीनों कल्पित है। कल्पित वस्तुओं से सत्य का नाश कैसे हो? इससे आत्मा अविनाशी और अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे शून्य स्थान में वैताल कल्पित होता है वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है। उस अभाव रूप जगत में जीव प्रमाद से एक का अभाव और दूसरे का सद्भाव जानता है। जब इस निश्चय को त्याग कर मोक्ष हो तब शांति प्राप्त होगी। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुख कहीं नहीं। जो मरकर फिर जन्म लेता है तो भी दुख न होना चाहिए, क्योंकि शरीर जब वृद्ध होकर क्षीण हुआ तब उसको त्याग कर नव तनु को ग्रहण किया तो उत्साह हुआ होना चाहिए। जो मृतक होकर फिर नहीं उपजा तो भी आनंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक जीता था तब तक ताप था, एक का अभाव जानता था, एक को ग्रहण करता था और एक को त्याग करता था, इससे संतप्त होता था। उनसे यदि छूटा तो बड़े आनंद की बात है, और जो सब चिदाकाश रूप है तो भी अपना रूप आनंद रूप है, दुख कुछ न हुआ। हे रामचंद्र जी, एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। यह सब जगत आत्मरूप है और जब आत्मरूप है तो दुख कैसे हो। जो तुम कहो कि मैं अपने कर्मों से डरता हूं, जो परलोक में मेरे लिए भय का कारण होंगे, तो ऐसे जानो कि बुरे कर्म का दुख कष्ट यहां भी होता है और परलोक में भी होगा, इसे बुरे कर्म मत करो। मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूं जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। वह उपाय यह है कि तुम जानो मैं नहीं, अथवा ऐसा जानो कि सब मैं ही हूं। सब वासनाएं त्याग कर अपने को अविनाशी जानो और आत्मसत्ता में स्थित हो। यह सब जगत भी तुम्हारा ही रूप है। जब ऐसे आत्मा को जानोगे तब शरीर के त्याग से भी कोई दुख न रहेगा और शरीर के होते भी दुख न होगा। यदि पूर्व शरीर को त्याग कर नया जन्म लिया तो भी आनंद हुआ, परम शांति हुई, और जो चिदाकाश रूप है तो भी परम आनंद हुआ। हे रामचंद्र जी, सब प्रकार आनंद है, केवल भ्रांति से दुख होता है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सब जगत ब्रह्मानंद स्वरूप प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जिसको आत्मसत्ता का प्रकाश प्राप्त है वह पुरुष सदा आनंद में मग्न रहता है। वह प्रकृत आचार भी करता है परंतु इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में स्वरूप से चलायमान कभी नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चलायमान नहीं होता और परम गंभीर रहता है। अतएव जो कुछ आत्मा से भिन्न उत्पन्न होता है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, क्योंकि चिन्मात्र सत्ता शरत काल के आकाश सदृश निर्मल है। जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैत रूप न भासेगा और व्यवहार में भी तुम्हें द्वैत न फुरेगा। हरि हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।